ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। पाकिस्तान के साथ लगी नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बारामूला से भुज तक करीब 26 स्थानों पर ड्रोन नजर आए हैं। इनमें वे ड्रोन भी शामिल हैं जो रिहायशी और सैनिक ठिकानों के लिए खतरा बन सकते थे। रक्षा सूत्रों के अनुसार इन स्थानों में बारामूला, श्रीनगर, अवंतीपुरा, नगरोटा, जम्मू, फिरोजपुर, पठानकोट, फाजिलका, लालगढ़ जट्टा, जैसलमेर, बाड़मेर, भुज, कुआरपेट और लखीनाला शामिल हैं। भारतीय सशस्त्र बल अलर्ट पर हैं और ड्रोन खतरों का ड्रोन रोधी प्रणाली का इस्तेमाल करके मुकाबला किया जा रहा है। स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और जहां जहां आवश्यक है वहां वहां तुरंत कार्रवाई की जा रही है। सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को घरों में रहने, अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने और कड़े सुरक्षा मानकों का पालन करने की सलाह दी गई है। निर्देशों में कहा गया है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल सजग और चौकस रहने की आवश्यकता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हथियारों से लैस ड्रोन के माध्यम से फिरोजपुर, अमृतसर और पठानकोट सहित पंजाब के सीमावर्ती जिलों में हमला करने की कोशिश की गई है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने सफलतापूर्वक इन प्रयासों को नाकाम कर दिया। हालांकि फिरोजपुर में ड्रोन से एक मकान को नुकसान पहुंचा है और 3 लोग घायल हुए हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उनके सुरक्षित होने की खबर है। फिरोजपुर पुलिस प्रमुख भूपेंद्र सिंह सिद्धू ने बताया है कि ये ड्रोन से प्रभावित मात्र एक घटना है और सेना ने ज्यादातर ड्रोन हमलों को निष्क्रिय कर दिया है। पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार को करीब 400 ड्रोनों का इस्तेमाल करते हुए लेह से सरक्रिक तक 36 स्थानों पर घुसपैठ करने का प्रयास किया। भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने काइनेटिक और नॉन काइनेटिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए कई ड्रोनों को मार गिराया। नई दिल्ली में विशेष संवाददाता सम्मेलन में भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने सैन्य ढांचे को लक्ष्य बनाने के इरादे से समूची पश्चिमी सीमा पर कई बार भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था।
कर्नल सोफिया ने कहा कि पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर भारी हथियारों से गोलाबारी की। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठ का लक्ष्य वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण और खुफिया जानकारी हासिल करना था। उन्होंने कहा कि ड्रोनों के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है और प्रारंभिक खबरों से पता चलता है कि ये तुर्की में बने अर्सगार्ड सोनगढ़ ड्रोन थे। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने 7 मई की शाम को ड्रोन और मिसाइल हमले के दौरान अपना सिविल विमानन क्षेत्र खुला रखा। उन्होंने नागरिक विमानों का इस्तेमाल ढाल के रूप में करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि पाकिस्तानी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र ड्रोन पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा ठिकानों पर दागे गए और इनमें से एक ड्रोन पाकिस्तान के एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर भारी तोपों और सशस्त्र ड्रोनों का इस्तेमाल करते हुए गोले बरसाए जिनसे कुछ भारतीय सैनिक हताहत हुए। उन्होंने कहा कि भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तानी सेना को भी भारी क्षति पहुंचाई गई है। मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि हमलों से इनकार करना पाकिस्तान की दोहरी नीति का उदाहरण है। उन्होंने गुरुद्वारों, कॉन्वेंटों और मंदिरों सहित पूजा स्थलों को निशाना बनाने और उन पर गोलाबारी करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की और कहा कि उसके लिए एक नया निम्न स्तर है। उन्होंने कहा कि बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय पर हमला वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या का माकूल जवाब है।
The Jaish-e-Mohammed was in some way directly or indirectly responsible for the death of Daniel Pearl. The attack on that facility of the Jaish-e-Mohammed in Bahawalpur is, I would imagine, a fitting part of this unfortunate incident.
विदेश सचिव ने बताया कि मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए करतारपुर साहिब गलियारी की सेवाएं अगले निर्देश तक स्थगित कर दी गई हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में तीनों सेनाओं के प्रमुखों थल सेना, वायुसेना और नौसेना के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा स्थिति और भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। गृहमंत्री अमित शाह ने भी सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशकों के साथ बैठक की। आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान की विस्तारित निधि सुविधा ईएफएफ व्यवस्था की पहली समीक्षा को मंजूरी दे दी है, जिससे देश को लगभग $1 बिलियन तक पहुंच मिल सकेगी। आईएमएफ ने घोषणा की है कि इसके अतिरिक्त बोर्ड जलवायु लचीलापन और आपदा तैयारियों का समर्थन करने के लिए लगभग $1.4 बिलियन की लागत वाली लचीलापन और स्थिरता सुविधा आरएसएफ व्यवस्था के लिए पाकिस्तान के अनुरोध को भी मंजूरी दे दी है। इससे पहले भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ बोर्ड की बैठक में मतदान से परहेज किया, जिसमें पाकिस्तान के लिए एक नए बेलआउट पैकेज पर विचार किया गया। भारत ने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के लिए ऋण वित्त पोषण निधि के दुरुपयोग की संभावना पर भी चिंता व्यक्त की। भारत ने बताया कि सीमा पार आतंकवाद के निरंतर प्रयोजन को पुरस्कृत करना वैश्विक समुदाय को एक खतरनाक संदेश भेजता है। पाकिस्तान की आक्रामकता के विरुद्ध भारत के हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब से परेशान आतंक का गढ़ पाकिस्तान अब डिजिटल क्षेत्र में गलत सूचनाएं फैलाने में जुट गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी वीडियो और गलत चित्रों का उपयोग कर पाकिस्तान वैश्विक नैरेटिव विकृत करने और जनता की धारणा प्रभावित करने की निरंतर कोशिश कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पाकिस्तान किस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है।
आतंकवादियों को पनाह देने के लिए मशहूर पाकिस्तान अब पूरी तरह दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। इसी हताशा में वह अब सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी और बेबुनियाद तस्वीरों और वीडियो से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की नाकाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन झूठ के पांव नहीं होते और सच्चाई सामने आ ही जाती है। पाकिस्तान ने एक और हास्यास्पद हरकत करते हुए भारत के खिलाफ शेखी बगारने के वीडियो गेम की क्लिप का इस्तेमाल किया है, जिसमें फर्जी रॉकेट और मिसाइल उड़ते नजर आ रहे हैं और इसे इस तरह पेश किया जा रहा है कि जैसे यह भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव से संबंधित है। पाकिस्तान के लफाजी का एक और उदाहरण सामने आया है, जिसमें ढाका के एक वीडियो को जम्मू में किए गए पाकिस्तानी हमले के तौर पर दिखाया जा रहा है। इसी तरह पाकिस्तान ने लेबनान में 2020 में हुए एक विस्फोटक हमले के वीडियो का इस्तेमाल कर यह फर्जी दावा किया है कि उसने भारत पर मिसाइल हमला किया है। ये सब कोशिशें दिखाती है कि पाकिस्तान की सूझबूझ पर पत्थर पड़ गए हैं और बदहवासी में उसे कुछ सूझ नहीं रहा और वे हताशा में बचकानी हरकत कर रहा है। क्लीन अख्तर की रिपोर्ट के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इस महत्वपूर्ण समय में प्रत्येक जानकारी की सावधानी पूर्वक जांच करना महत्वपूर्ण है। कोई भी संदिग्ध सामग्री, विशेष रूप से भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित या मौजूदा स्थिति से संबंधित कोई भी जानकारी की सूचना पीआईबी फैक्ट चेक को देनी चाहिए। ऐसी सामग्री व्हाट्सएप नंबर 8799711259 और ईमेल आईडी socialmedia@pib.gov.in पर भी भेजी जा सकती है। नंबर एक बार फिर सुन लें, 8799711259। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद से भारत के दृष्टिकोण को लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भरपूर समर्थन मिल रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, इजराइल, कतर और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई अन्य देशों ने भारत को अपना समर्थन दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि यूरोपीय देशों के साथ भारत के दीर्घकालिक संबंध अब और भी ऊंचे स्तर पर पहुंचने वाले हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच जारी जटिल व्यापार वार्ताओं का परिणाम इसी वर्ष निकलेगा। दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस वर्ष फरवरी में यूरोपीय संघ के कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स का दौरा काफी महत्वपूर्ण था। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार उपलब्ध है। श्री चौहान ने नागरिकों से किसी भी आपात स्थिति में शांत रहने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और आगामी फसलों के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां हैं। तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में दीपिका कुमारी और पार्थ सुशांत सालुंखे ने महिला और पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत आज दो स्वर्ण पदक मैचों में भी हिस्सा लेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।